ओम शांति। आज की कथा का सार है कर्तव्य परायण बीरवर। बहुत पहले की बात है, बर्दवान नगर में एक धर्मात्मा राजा रहता था। राजा का नाम था रूपसेन। राजा की धर्मप्रियता के कारण उसका बर्दवान नामक नगर प्रत्येक प्रकार की सुख समृद्धि से सब प्रकार संपन्न था। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति अपनी जीविका की खोज में आया। उस व्यक्ति का नाम बीरबर था। उसके साथ उसकी पत्नी, कन्या एवं पुत्र भी था। बड़ी अनुनय के साथ उसने राजा से जीविका की प्रार्थना की। राजा ने प्रभावित होकर उसकी नियुक्ति मुख्य द्वार के रक्षक के रूप में कर दी और वेतन तय हुआ 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन। यही बीरबर ने मांगा था। दूसरे दिन राजा ने गुप्तचरों से पता लगवाया कि वो किस प्रकार व्यय करता है, अर्थात खर्च करता है। गुप्तचरों ने राजा को बताया कि वह अपना अधिकांश धन यज्ञ तीर्थ शिव विष्णु के मंदिरों में आराधना आदि के कार्यों में व्यय करता है। उसका एक बड़ा भाग साधु ब्राह्मणों और अनाथों के में बांट देता है। थोड़ी सी बची हुई राशि से अपने परिवार का पालन करता है। यह जान करके राजा ने उसकी सेवाओं को स्थायी कर दिया। एक दिन की बात, आधी रात का समय था। बादल गरज रहे थे और मूसलधार वर्षा हो रही थी। बिजली भी कड़क जाती थी। रात बड़ी डरावनी हो गई थी। अचानक राजा को किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने मुख्य द्वार पर जाकर बीरबर से इसका पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश सुनते ही बीरबर तलवार लेकर चल पड़ा। राजा भी इस आशय से कि कहीं वो डर न जाए, उसे सहयोग देने के लिए तलवार लेकर के उसके पीछे लग गया। बीरबर रोने की आवाज़ की दिशा में चला तो देखा कि शमशान में एक स्त्री रो रही है। जब बीरबर ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री ने बताया, मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ। इस महीने के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाने वाली है। उनके मर जाने पर मैं अनाथ हो जाऊंगी। मेरा कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। यही मेरे रोने का कारण है। यह सुनकर बीरबर बहुत निराश हुआ। उसने राज्यलक्ष्मी से पूछा, देवी, क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे राजा की आयु बढ़ जाए? उत्तर मिला, यदि बीरबर अपने पुत्र की बलि चंडिका को चढ़ा दे तो राजा 100 वर्ष तक जी सकता है। बीरबर उल्टे पांव लौटकर घर पहुंचा, पत्नी और पुत्र आदि को जगाया और परस्पर परामर्श करके पूरा परिवार चंडिका के मंदिर में पहुंच गया। राजा भी छिपकर उसके साथ साथ चल रहा था। बीरबर ने चंडिका देवी से राजा की शतायु 100 वर्ष की आयु की प्रार्थना करके अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। ये देख बहन ने भी अपनी जान दे दी। पुत्र और पुत्री के शोक में माता भी चल बसी। इन तीनों का दाह करके बीरबर स्वयं भी राजा की आयु वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा यह सब छिपकर देखता रहा। उसने अपने जीवन को व्यर्थ समझते हुए देवी के सामने कुछ प्रार्थना की और अपनी बलि देने के लिए जैसे कि तलवार निकाली, देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन तुम्हारे धर्माचरण से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जीवित रहो और मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा ने वीरवर को सपरिवार जीवित होने का वर मांगा, फलतः वे चारों प्राणी जीवित हो गए। राजा चुपचाप अपने महल में चला गया। वीरवर पूरे परिवार को जीवित देख आश्चर्य के साथ देवी की कृपा मानते हुए परिवार को घर छोड़ करके राजमहल के मुख्य द्वार पर जा खड़ा हुआ। जब राजा को उसकी उपस्थिति का पता चला तो उस स्त्री के रोने का कारण पूछा। वीरवर ने सहजता से उत्तर दिया, राजन वह कोई चुड़ैल थी, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं। राजा ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और प्रातःकाल अपनी पूरी राज्य परिषद के सामने पूरी घटना का वर्णन करते हुए वीरवर को कर्नाट देश का अधिपति बना दिया। परोपकार और कर्तव्य परायणता के ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। इस कथा का सार यही है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता के कारण अपने सर्वस्व को भी त्याग करके जिसकी सेवा और जिसका नमक खाया है उसके जीवन का उद्धार, उसके जीवन का कल्याण के लिए अपने को कुर्बान करते हैं। तो ऐसी कुर्बानी ही वास्तव में कर्तव्य परायणता का एक ज्वलंत उदाहरण है जो वीरवर ने अपने करके दिखाया। उन्होंने अपने सम्राट को, नरेश को, अगर उनकी ही उपस्थिति नहीं रहेगी अथवा उनकी ही मृत्यु हो जाएगी तो सारा बेड़ा ही डूब जाएगा, ये यथार्थता को समझने के बाद इसका उपाय क्या है जो पूछते हुए, उसका उपाय अपने पुत्र का बलिदान देना है करके समझा। तो तब परिवार वालों को ये राय रखते हुए, जिस राजा ने हमें ऐसा पद और प्रतिष्ठा दिया, ऐसी जागीर दी, उसके लिए हमारे जीवन में क्या त्याग होना चाहिए, तो सभी ने एक साथ सहमत होते हुए पुत्र की बलिदानी दी। पुत्र की बलिदानी में जाने के बाद बहन को भी लगा अब मैं क्यों जीऊं, उसने भी बलिदानी दे दी। फिर उनकी औरत ने भी समझा, जब मेरे दोनों बेटे ही चले गए तो मैं जी करके क्या करूंगी, उन्होंने भी बलिदान दी। इतना हो जाने के बाद फिर लगा कि जोरावर को भी लगा कि मैं अब क्यों जीऊं, तो उन्होंने वीरवर ने भी समझा कि अब मैं क्यों जीऊं। तो जब वो भी अपने आप को कुर्बान कर दिए तो तब जिसके लिए कुर्बान किया था उनके दिल में इतने गहन उनके प्रति कल्याण की भावना जाग उठी, जो उनके सामने उनका जो तपोबल के कारण देवी प्रकट हुई तो उन्होंने वो मांग लिया कि भाई ऐसे बलिदानियों का उद्धार किया जाए। तो वही हुआ, उनका सारा परिवार भी उद्धार में पहुंच गया और फिर पुनः उनको जिस अवस्था की स्थिति थी, जो उनका प्रारब्ध था, वो मिला। तो हमारा किया हुआ कर्म इस संसार में अगर हम कर्तव्य परायणता से करते हैं तो हमें उसके बहुत गुणा मल्टीप्लाइड होकर के, गुणात्मक वृद्धि होकर के हमको प्राप्ति होती है। ये इसका कथा वस्तु का सार है। ओम शांति।